मेरे प्रिय ऊर्जावान साथियों नमस्कार। आज 9 मई 2017 है और आज के इस efis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मनीष कुमार जांगिर, आप अलवर राजस्थान से हैं, धनंजय कुमार साहू, आप जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं, और संदीप कुमार, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो मनीष, धनंजय और संदीप, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस न्यूज एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। बात मेरी नहीं है, बात आप लोगों में से ही किसी एक की है, यानी कि मेरे एक प्रिय श्रोता की है, और इनका नाम है किशन मेवाड़ा, जो पालीताना गुजरात से हैं, और काफी मेल इनके बीच बीच में आते रहते हैं और बड़े प्यारे मेल आते हैं, भाषा भी इनकी मुझे काफी अच्छी लगती है। किशन मेवाड़ा, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है, मैं बहुत डिटेल में तो जाकर के आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में लिखा है वो मैं बताना नहीं चाहता, बड़ा संकोच होता है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में एक प्रयोग किया और प्रयोग करना बहुत अच्छी बात है, मैं प्रयोगों का बहुत सम्मान करता हूं। प्रयोग उन्होंने ये किया कि इन्होंने सोचा कि यार बहुत समय से लाइफ मैनेजमेंट और ये डेली ऑडियो सुन रहे हैं, अब इससे जरा सा इसको बंद करके भी तो देखें, इससे अलग होकर के भी तो देखें कि देखें क्या फर्क पड़ता है जिंदगी के ऊपर। बहुत सही बात है क्योंकि हम कभी कभी चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं, इसी को तो नशा कहा जाता, नशा फिर चाहे किसी भी चीज का हो। तो उन्होंने करके देखा, राइट, और करके देखने के बाद उनको क्या महसूस हुआ वो मैं जो बीच बीच के जो उनके शब्द हैं वो आपको सुना रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं काट काट करके केवल आप लोगों के काम की चीज सुना रहा हूं। बीच में उन्होंने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, डेली ऑडियो के बारे में और मेरे बारे में कुछ और चीजें जो लिखी हैं वो मैं संकोच बस आपसे नहीं कह रहा हूं। और मुझे मालूम भी है कि जब ये बातें कही जाती है ना तो सुनने वालों को यही लगता है कि मुंह मियां मिट्ठू बना जा रहा है, तो मित्रों उससे मैं बच रहा हूं। उन्होंने जो लिखा है देखिए क्या है। आदरणीय गुरु जी, मैंने एक निर्णय लिया कि एक हफ्ते तक आपसे दूर रहूंगा, देखता हूं मेरे जीवन में या पढ़ाई में क्या फर्क पड़ता है, मेरे नतीजे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सब्जियां तो मैं सभी तरह की खा रहा था लेकिन स्वाद किसी में नहीं आ रहा था। ये इन्होंने सब्जियों का अर्थ थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, मुझे लगता है कि उन्होंने प्रतीक भाषा में लिखा है कि मैं किताबें भी पढ़ रहा था, लोगों से मिल भी रहा था, समय भी पास हो रहा था, मतलब कर मैं सब कुछ भी रहा था लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा था। शायद मुझे लगता है कि वो उसी सेंस में उन्होंने कहा होगा। फिर उन्होंने लिखा है, चलिए मैं पढ़ देता हूं ये भी लाइन, शायद दूसरी सब चीजों की खाना पूर्ति तो दूसरे स्थानों से हो जाती लेकिन डीएजी और लाइफ मैनेजमेंट वाला अकूट अनुभव और ज्ञान का खजाना, मैं अब बीच की लाइन हटा रहा हूं, वो मेरे बारे में है, वो अद्भुत है। मित्रों ये उन्होंने लिखा है। फिर आगे अंतिम उनका जो वाक्य है मैं बीच में छोड़ करके फिर सुना रहा हूं, अब ऐसा अनुभव नहीं करना है क्योंकि निरंतरता की कड़ी ही ताकत है। जय हिंद, आपका शिष्य किशन मेवाड़ा, पालीताना गुजरात। मित्रों ये इन्होंने लिखा है, मैंने पढ़कर इसलिए सुनाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, प्रयोग करना मुझे अच्छा लगा। देखिए मित्रों होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जब चीजें मिलती रहती हैं तो हमें उसके महत्व का एहसास नहीं होता। सच पूछे तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक लड़का है जो बहुत आगे निकल जाता है, दूसरे लड़के के पास उससे ज्यादा सुविधाएं हैं, लड़के लड़की मतलब सभी की बात मैं कर रहा हूं, केवल सुविधाएं ही नहीं बल्कि क्षमताएं भी है। देखिए एक तो सुविधाएं हों क्षमताएं न हो, लेकिन दूसरे के पास सुविधाएं हैं और साथ में क्षमताएं भी हैं, वो आगे नहीं निकल पाता, चाहता भी है करता भी है फिर भी वो पीछे क्यों रह जाता है। मित्रों इसके बड़े वैलिड रीजन होते हैं, हम समझना नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, सच पूछे तो खुद को दोष नहीं देना चाहते, अदरवाइज उसके वैलिड रीजन होते हैं। रीजन जो एक मुझे लगता है, जो मैं इस लेटर के संदर्भ में, इस मेल के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जब हमें चीजें मिलती रहती है ना तो हमें उसकी उपयोगिता दिखाई नहीं देती, बिल्कुल दिखाई नहीं देती। मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट से या जब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्कशॉप लाइफ मैनेजमेंट की वर्कशॉप करने जाता था तो मैं उसमें एक प्रयोग कराता था। प्रयोग में यह कराता था कि आप लोग ऐसे कीजिए कि थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ये मानिए कि आप बिल्कुल अंधे हो गए, आपकी दोनों आंखें नहीं है, और चलिए अब आप मूव कीजिए, कमरे में मूव कीजिए। आपको मैं कह रहा हूं कि आप जाइए वॉशरूम होकर के आ जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जाइए उनके बगल में बैठ जाइए, अब आप एक्शन कीजिए। तो सबके सब खामोश बैठे रहते थे, अब आंखें नहीं है तो कैसे कहीं जाएं। इसका मतलब है कि जब तक आंखें हैं हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब आंखें चली गई तो पता लग रहा है कि अरे बाप रे इसकी तो इतनी बड़ी वैल्यू है। पानी आता रहता है नल में, हम बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन पानी नल में नहीं आता उस दिन पता लगता है कि इस पानी की कितनी वैल्यू है। वही होता है, तो ऐसे प्रयोग करने पर हमें चीजों की वैल्यू पता लग जाती है, और डेफिनेटली जब चीजों की वैल्यू पता लग जाती है तभी हम उसे स्वीकार भी करते हैं। अदरवाइज तो फिर सब कुछ हो ही रहा है, चल ही रहा है, होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन बात नहीं बनेगी। चलता तो रहेगा लेकिन वो चलता रहेगा हमें कहीं पहुंचाएगा नहीं। तो इसलिए मुझे ये जो मेल है ये अच्छा लगा। मित्रों आइए अब मैं न्यूज एनालिसिस पर आता हूं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है फ्रेंड्स, सच पूछे तो एक ही खबर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कंटेंट के रूप में दो तीन और बातें होंगी जो मैं आपके सामने रखूंगा। वो वामपंथी उग्रवाद को लेकर के मैंने कल भी आपसे कहा था कि दिल्ली में मीटिंग हो रही है जिसमें कई राज्यों के संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स आए हुए हैं, पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आए थे और हमारे गृहमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें क्या निर्णय लिए गए इसके बारे में अखबारों में बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात जो हमारे गृह राज्य मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कही वो ये कि इनकी फंडिंग बंद करनी पड़ेगी। इनकी फंडिंग के जो स्रोत हैं, क्योंकि देखिए जो उग्रवाद वामपंथ उग्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं आखिर में कहीं ना कहीं से तो उनकी फंडिंग हो रही है, उनके पास हथियार भी हैं और अच्छे स्वचालित और बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, बम भी बना रहे हैं, गोला बारूद आ रहा है, खाने पीने का भी मामला चल रहा है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं अगर इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम किसी तरीके से बंद कर सकें तो वो ऑलरेडी सरेंडर करने की नौबत उनकी आ जाएगी, तो फंडिंग बंद करनी पड़ेगी, ये इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात कही। दूसरी जो बात थी वो थी कि एक पूरी की पूरी एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी कि यूनिफाइड कमांड बनाया जाए, मतलब इससे जुड़े हुए जितने राज्य हैं, जितने राज्य इससे त्रस्त हो रहे हैं वो सब मिलकर इसके बारे में काम करें यूनिफाइड तरीके से और समग्र नीति बनाएं। तीसरी बात जो उन्होंने सबसे अच्छी कही, और अगर आपने कल का डीडी न्यूज देखा हो तो इस खबर के बाद प्रकाश सिंह जी आए थे, मिस्टर से प्रकाश सिंह जी ही उनका नाम है जो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वो बीच बीच में लेख भी लिखते हैं पुलिस प्रशासन पर, आपने देखा होगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करता हूं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, खासकर मैं वो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि दिक्कत ये हो रही है कि ये जो नक्सली समस्या है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, राज्यों ने ये समझ लिया है कि अब ये तो केंद्र सरकार की समस्या है, वो इसका हल करे। बोले देखिए जबकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो ये राज्य सरकारों का ही दायित्व है, लेकिन राज्य सरकारें क्या करती हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल भेज दीजिए, अर्धसैनिक बल भेज दिया जाता है और अर्धसैनिक बल डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो अर्धसैनिक बल वहां डिप्लॉय किए जाते हैं उन्हें पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, जबकि पुलिस को बराबरी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस के जो लोग हैं वो उस एरिया को जानते हैं, वहां के लोगों के रीति रिवाज को जानते हैं, वहां की भाषा को समझते हैं। तो जब तक वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो जो अर्धसैनिक सैनिक बल हैं जैसे बीएसएफ हो जाए या सीआरपीएफ हैं, ये क्या कर पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी कमी है। और आपको ध्यान होगा मित्रों, अभी जो सुकमा में कांड हुआ था जिसमें 25-26 नौजवान मारे गए थे हमारे, उसमें एक व्यक्ति थे शायद शेख मोहम्मद या कोई कुछ उनका नाम था, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और चैनल पर उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हम चाहते हैं कि पुलिस वाले हमको रास्ता दिखाएं, हमारे साथ रहें, हमको बताएं, हम जहां रह रहे हैं, हमारे जहां शिविर हैं उसके पास में उनका भी कैंप हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद के लिए आ सके, लेकिन वो हमें उनका सहयोग अवेलेबल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करना है, अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये हाईलाइट किया जाना चाहिए। प्रकाश सिंह जी ने एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, लेकिन मीटिंग में तो जो बातें कही गई हैं उन्होंने खुद भी कहा प्रकाश सिंह जी ने कि देखिए कोई नई बात नहीं कही गई है, हर बार यही बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, मॉडर्न इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जाएं, ड्रोन इस्तेमाल किया जाए, हेलीकॉप्टर लाया जाए, इमेजेस ली जाएं, ये तो हमेशा होता रहता है, कहा ही जाता है विकास किया जाए, सड़कें बन रही हैं, लेकिन इनको किया कैसे जाए और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में किया जाए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात बताई, उन्होंने गंभीर बात ये बताई कि जो नक्सल प्रभावित जो एरिया है वहां एक ऑफिसर है, अर्धसैनिक बल के ही एक ऑफिसर है जो युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो नक्सलियों से कैसे लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक वो लगभग लगभग शायद 10,000 का आंकड़ा था कि 10,000 युवाओं को ट्रेंड कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये ट्रेंड करते हैं कि नक्सलियों से कैसे मुकाबला किया जाए नक्सलियों का, और जब ये ट्रेंड हो जाते हैं युवक तो इनकी पोस्टिंग और कहीं कहीं कर दी जाती है, इनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। और उसमें उन्होंने एक बड़ा व्यंगात्मक शब्द इस्तेमाल किया था कि ये लोग फिर जाकर के अफसरों के यहां काम करते हैं, मतलब उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। स्टेट में ये बहुत है, स्टेट में आप देखेंगे कि अफसरों के घर पर पता नहीं कितने नौकर चाकर सरकारी काम करते रहते हैं, मतलब सच पूछे तो अगर नौकर चाकर घर पर ना हो तो अफसरी ही नहीं होती है। अब एक अफसरी तो चली गई, जो रेड लाइट है वो चली गई, लेकिन अभी गाड़ी और नौकर चाकर तो बचे हुए हैं, बंगले तो बचे हुए हैं, देखिए ये कब तक बचे रहते हैं। तो बोले कि वो जाकर के वहां काम करते, सोचिए कि उनको ट्रेंड किया गया है, एक स्पेशल पर्पस से ट्रेंड किया गया है, और वो जाकर के क्या कर रहे हैं। ये उन्होंने बहुत बहुत संवेदनशील बात कही है, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट जो स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं ये आपके पास होने चाहिए। बाकी मित्रों मुझे लगता है कि इस पर आर्टिकल आएंगे, एडिटोरियल कमेंट भी आएंगे, वो हम प्रोवाइड जब हम लोग जब आएंगे तो हो सकता है कि उस पर बात करें। और इस तरीके से ये जरूर इश्यू ऐसा है जिस पर आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, और नोट्स तैयार होने का मतलब है कि पॉइंट पॉइंट आप इसके नोट करते जाएं। जो 2-3 जो छोटी छोटी खबरें हैं फ्रेंड्स, उसमें एक है आपने देखा कि यूएन हैबिटेट का भारत को अध्यक्ष चुना गया है, तीसरी बार हुआ है, एक कंटेंट के रूप में खबर है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक जो खबर है वो है कि ईरान की खबर है कि जैसे देखिए आपने कि ईरान ने किस तरह से पाकिस्तान को एकदम चेतावनी दी है कि तुम हमारे यहां ये जो आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं या तो इनको बंद करो या फिर हम जो है ना घुस करके मारेंगे, अटैक करेंगे, कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो हमारे न्यूज में था। मतलब ईरान बिल्कुल खड़ा हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ कि या तो तुम इसको रोको, अदरवाइज फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहो। एक इंटरनेशनल अफेयर्स का एक कंपोनेंट है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां हैं, देखिए एक्सपोज तो हो गया है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा सेंटर है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां पर इसके बहुत से कैंप चल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को अब पता लग गया है। अब दुनिया के अपने अपने एक डिप्लोमेटिक आधार हैं, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हित हैं, शक्ति संतुलन है, उसके आधार पर वो पाकिस्तान को कितना, पाकिस्तान का विरोध कर पाते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना चुप्पी साध लेते हैं, ये उनके ऊपर है। और पाकिस्तान को एक्सपोज करने में इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस न्यूज आइटम का जो भी मैंने बताया जो महत्व है वो केवल इस मायने में कि भारत ये मान सकता है कि कम से कम उसका एक बहुत अच्छा मित्र यहां है जो ईरान के रूप में है, जो पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी दे रहा है, और वो उसी तरीके से पाकिस्तान से त्रस्त है जैसे कि हम त्रस्त हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो कड़ियां होती या तथ्य होते हैं, मनके होते हैं, जैसे माला में मनके होते हैं ना, तो आप इसको मनके ही मान लीजिए। तो ये जो छोटे छोटे मनके होते हैं मित्रों, इन मनकों को धागे में पिरोकर माला बुनने की, बनाने की क्षमता तो आपको पैदा करनी पड़ेगी सिविल सर्विस में। और जब हम न्यूज सुनते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उस वह हमें सच पूछे तो वो मनके ही मिलते हैं। अब तो मनकों का ही जमाना आ गया है, बनी बनाई माला बहुत कम उपयोगी रह गई है, माला तो हमें खुद अब बनानी पड़ेगी जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहा है। एक छोटी सी खबर और थी मित्रों, उसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा। जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, चारा घोटाला मामला बड़ा फेमस मामला है, वो लगभग लगभग खत्म सा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस पर आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए कि नहीं, इसे इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, फिर से आपराधिक मामला होगा। और बल्कि दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि इसका जो फैसला है वो 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ये 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो राजनेता होते हैं डेफिनेटली प्रभावशाली होते हैं, गवाहों को इधर करेंगे वो कुछ और करते रहेंगे, वकील बड़े बड़े पैसे वाले जो बड़े बड़े नामी वकील है वो रख सकते हैं, तो नामी वकीलों की अपनी क्षमता तो होती ही है, फिर वो लंबा खींच जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो भी फैसला होना है विद इन 9 मंथ्स हो जाना चाहिए, तो ये एक बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं कि जुडिशरी कैसे कर रहा, अयोध्या मामले में भी जुडिशरी ने यही किया कि नहीं फिर से केस शुरू होगा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में जो ध्वस्त हुआ था। अब इस मामले में भी आप देखिए कि जो लगभग लगभग खत्म सा हो गया, रीओपन करके बोले कि नहीं इस पर आपराधिक मामला चलेगा। तो एक जुडिशरी का आपको एक नया चेहरा दिखाई दे रहा होगा, आपको एक नया एक्शन दिखाई दे रहा होगा। जो निर्भया मामले में भी देखिए, निर्भया मामले में जो 4 लोगों को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है, उसमें जो जुडिशरी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता और सामाजिक दृष्टि को दर्शाता है कि ऐसे पूरे देश में सदमे की सुनामी आ गई थी और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो इस तरह के वक्तव्य जब सुप्रीम कोर्ट देता है तो पता लगता है कि नहीं, ठीक है, जो कानून है अपनी जगह पर है, संविधान अपनी जगह पर है और जुडिशरी को संविधान और कानून की मर्यादा में ही अपना काम करना है, लेकिन कहीं न कहीं उसे एक सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक कल्याण की दृष्टि भी अपने अंदर रखनी होगी, जो इन सब में थोड़ी बहुत तो दिखाई दे रही है। और यदि इस तरह के कलर्ड वाले क्वेश्चंस जुडिशरी को लेकर के पूछे जाते हैं तो ये जो छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ये आपके लिए उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएंगी, और इन्हीं बातों को का जिक्र करके आपको अपने तथ्यों को रखना होगा और उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो मित्रों, न्यूज से बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं थोड़े से क्लिपिंग्स आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ज्यादा क्लिपिंग्स नहीं है, वो आप लोग देख लेंगे। मैं आता हूं लास्ट में अब ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक मेरे पास फिर से एक प्यारा सा मेल आया है, ये हर्षिता गुप्ता का है जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने लिखा है कि जो नीलेश मिश्र हैं वो उनके ग्रुप में शामिल हो गई हैं और उनके लिए कहानी वगैरह लिख रही हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि सर उसमें मैं AFEIS को मेंशन करना चाहती हूं, आप उसकी अनुमति दें। तो हर्षिता, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप AFEIS से अपने आप को इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रही हैं। आपने अनुमति मांगी है, अनुमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ओपनली ही कह रहा हूं कि जो भी इसमें अपना योगदान दे सकता हो प्लीज अपना योगदान दे, क्योंकि आप ही लोग हमारी शक्ति हैं, आप ही सब हमारी क्षमता हैं, आप ही हमारे एम्बेसडर हैं, आप ही हमारे एडवर्टीजमेंट हैं, आप ही इस AFEIS.com के जीवन हैं, जीवन दाता हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। और इनफैक्ट ये सच में मैं मन से ही कह रहा हूं, ये कोई मात्र शब्द नहीं है। तो आपने इतना सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल आपको अनुमति है, हमें बेहद खुशी होगी यदि आप ये करेंगी। तो मित्रों, मैं और कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं, किशन मेवादा का नाम मैं पहले ले ही चुका हूं। अन्य मित्र हैं प्रीति पांडे फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, SM कुमार राज, रमेश कुमार हरियाणा से, आलोक सिंह मुंबई से, रविन्द्र कुमरावत, घनश्याम भारद्वाज शिमला हिमाचल प्रदेश से, हेमंत घोड़के पुणे महाराष्ट्र से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रशांत शेखर गर्ग झाबुआ मध्य प्रदेश से, वेंकटेश पटेल मुखर्जीनगर दिल्ली से, घनश्याम वर्मा सुल्तानपुर से, सूर्य प्रताप सिंह रायबरेली उत्तर प्रदेश से, कुमार गौरव मुजफ्फरपुर बिहार से और शंकरी पटेल कटक उड़ीसा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अंत में एक सूचना ये कि कल बुद्ध पूर्णिमा है, गस्टेड हॉलीडे है, तो सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि वो हम सबको विवेक प्रदान करे ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और सूचना उसके साथ ही यह मित्रों की, चूंकि गस्टेड हॉलीडे है तो कल यह डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको मिलेंगी। परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।